आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।
बीस जनवरी शुक्रवार के दिन भर में आपका स्वागत। मेरा नाम नितिन ठाकुर। कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच राड बढ़ती ही जा रही है। ना ब्रिजभूषण झुकने को तैयार हैं और ना ही रेसलर्स।
हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा। जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे।
तो इस मामले में आज का अपडेट लेंगे और बताएंगे कि पिछले कुछ सालों में फेडरेशन की किन हरकतों से खिलाड़ी नाराज होते चले गए। सियासत के लिहाज से देखें तो बीजेपी का स्वर्ण युग जारी है, क्योंकि सबसे ज्यादा राज्यों में पार्टी या फिर गठबंधन की सरकार है। लेकिन दक्षिण भारत की पहेली सुलझाना अभी भी बीजेपी के लिए मुश्किल है। कर्नाटक और तेलंगाना में इस साल चुनाव है, तो क्या कोई करिश्मा कर पाएगी बीजेपी, ये जानेंगे। उधर रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन नेटो कंट्रीज से हैवी बैटल टैंक्स मांग रहा है, लेकिन यूएस और जर्मनी क्यों आनाकानी कर रहे हैं, ये बात जानने लायक है। वहीं इंडिया न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे मैच पर बात होगी। सीरीज जीतने के लिए रोहित शर्मा को क्या करना होगा, एक्सपर्ट से पूछेंगे। और आखिर में हमारा नया सेगमेंट भौचक, जिसमें दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला से लंबी उम्र का राज सुनेंगे। मगर पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस कुमार केशव से सुनते हैं।
शुक्रिया नितिन। कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों का प्रोटेस्ट जारी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर पहुंचे रेसलर्स। गुजरात का मोरबी ब्रिज मामला, ओरेवा कंपनी के एमडी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। फारूक अब्दुल्ला भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल, राहुल की तुलना शंकराचार्य से की। फ्लाइट में पेशाब वाले केस में एयर इंडिया पर 30 लाख जुर्माना, पायलट भी 3 महीने के लिए सस्पेंड। नए लोकसभा चैम्बर में पेश हो सकता है बजट, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने शेयर की नए भवन की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 लोगों को दिया अपॉइंटमेंट लेटर, कहा नए साल की शुरुआत उज्ज्वल भविष्य की उम्मीदों के साथ करें। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की जातीय जनगणना पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज की, केंद्र ने भी जताई थी आपत्ति। वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को मिली अंतरिम जमानत, सीबीआई ने 26 दिसंबर को किया था अरेस्ट। मुंबई के एंटी नारकोटिक्स सेल ने 23 लाख का ड्रग्स किया बरामद, तस्कर भी गिरफ्तार। 26 जनवरी परेड में चीफ गेस्ट होंगे इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। परेड में इजिप्ट की सेना की टुकड़ी भी होगी शामिल। गूगल में 12,000 जॉब्स की कटौती, सीईओ सुंदर पिचाई ने किया ऐलान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बम विस्फोट, घटना में 8 लोग घायल। और भारत न्यूजीलैंड के बीच रायपुर में दूसरा वनडे मैच कल, सीरीज में 1-0 से आगे है इंडिया।
ये है दिनभर और मैं हूं नितिन ठाकुर। दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडियन रेसलर्स के प्रोटेस्ट का आज तीसरा दिन है। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे बड़े पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। फेडरेशन को भंग करने की मांग पर ये लोग अड़े हुए हैं। यौन शोषण और दूसरे आरोपों की शिकायत लेकर रेसलर्स आज इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन पहुंच गए। पीटी उषा की अध्यक्षता वाली इस एसोसिएशन ने आपात बैठक बुलाई और सूत्रों का कहना यह है कि मामले की जांच के लिए कमेटी अब बनाई जाएगी। धरने पर बैठे खिलाड़ी देर शाम खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मिलने पहुंचे हैं। बजरंग पूनिया ने कहा कि पहले भी उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी और उन्हें पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से काफी उम्मीदें हैं और FIR दर्ज कराने पर हमने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।
मारने तक की धमकी देते थे, जब मैं बोल रहा हूँ अगर खिलाड़ी पहले एकजुट हो जाते तो कोई नहीं बोलता। हमारे पास फेडरेशन के स्क्रीन शॉट है जिन्होंने फोर्स किया कि आप ये ट्वीट करिए, आप फेडरेशन के बारे में ये बोलिए, आप नेताजी के बारे में ये बोलिए, तो वही चीज बोल रहे हैं। जब खिलाड़ियों को मारने तक की धमकी दे रहे हैं तो इससे बुरा समय और क्या होगा।
हालांकि सरकार से जुड़े सोर्सेज का कहना है कि बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटाए नहीं जाएंगे। खिलाड़ी ज्यादा जोर देंगे तो जांच पूरी होने तक वो पद से दूर रह सकते हैं। टीएमसी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। पार्टी की लोकसभा सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद ये व्यक्ति अपने पद पर कायम है। वहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है।
मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा।
रेसलिंग फेडरेशन भी प्रोटेस्ट कर रहे पहलवानों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के बारे में अब विचार कर रहा है, क्योंकि कल से यूपी के गोंडा में रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप होनी थी जिसका कई खिलाड़ियों ने बायकॉट कर दिया है और फेडरेशन का कहना यह है कि उन खिलाड़ियों को गुमराह किया गया। तो ये टसल सुलझने की बजाय क्यों उलझता जा रहा है, ये हमने पूछा इंडिया टुडे के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राहुल रावत से।
जो पहलवान जो कोशिश कर रहे हैं वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करे, गवर्नमेंट बीच में पड़े और एक डिसीजन ले जहां पे वो WFI प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दे और साथ ही पूरी की पूरी फेडरेशन भी डिसॉल्व कर दे। अब दिक्कत की बात ये है कि मिनिस्ट्री इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकती है ऑफिशियली और डायरेक्टली, क्योंकि ये एक ओलंपिक चार्टर का उल्लंघन होगा, तो मिनिस्ट्री के वहां हाथ बन जाते हैं। इसलिए अब IOA को आपने इन्वॉल्व किया है। अब किसी को भी, क्योंकि ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग होते हैं और इनको हटाने के लिए भी एक प्रोसीजर होता है, तो अगर जो भी होना एक प्रोसेस के तहत होना है, तो इसलिए रेसलर्स जो मांग रहे हैं उसमें वक्त भी लग सकता है और पहले तो होना पड़ेगा वो, और होगा उसमें वक्त लगेगा अगर होगा तो।
राहुल थोड़ा सा ये बताइए कि फेडरेशन के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो कैसी है, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, और पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ जिसका आज ये नतीजा हम देख रहे हैं।
नतीजे जो है वो तो खैर हमारे पास नतीजों के नाम पे ये भी है कि ब्रिजभूषण शरण जो है उन्होंने 2011 में रेसलिंग की कमान संभाली थी और उसके बाद आपको 2012 ओलंपिक्स में दो मेडल जीते, उसके बाद 2016 में आपने एक मेडल जीता रेसलिंग से और 21 में टोक्यो ओलंपिक्स में भी आपने दो मेडल जीते। और रहा सवाल पहलवानों का, तो उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, अब वो एलिगेशंस की जांच होगी, जांच के बाद क्या निकल कर आता है वो देखना पड़ेगा। और ये कहा ये भी जा रहा है कि ये लॉबीज हैं तीरथ राणा, उन्होंने एक वहां पे एक रेसलिंग की बॉडी अपनी बनाई थी और जिसको मान्यता नहीं दी गई WFI ने, और WFI के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण, उसको मान्यता नहीं दी गई। उसके बाद और भी काफी एफर्ट्स लगाए गए कि एक रिबेल या एक ऐसी बॉडी वहां पे क्रिएट करी जाए जिसमें बबीता फोगट जो इस क्रूसेड इस कैंपेन में एक्टिवली इन्वॉल्व है वो भी पार्ट थी और भी लोग इन्वॉल्व थे, वो भी नहीं हुआ। फिर इवेंचुअली ये होता है कि जो WFI जिसको मान्यता देता है वही बॉडी वहां पे एक इलेक्टेड बॉडी रिकग्नाइज बॉडी बनती है, तो वो सब चीजें भी हैं इन्वॉल्व। आप इसमें बहुत सारी चीजें और भी इन्वॉल्व हैं जो मेरा, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है पर मेरा इस वक्त उन बातों को बोलना शायद से सही नहीं होगा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या कि कोई, जैसे ब्रिजभूषण शरण ने कहा है कि भाई एक उद्योगपति एक इंडस्ट्रियलिस्ट इसके पीछे है, तो उसमें काफी सारी चीजें, इसमें काफी सारे पेच जुड़े हुए हैं जो वक्त के साथ खुलते जाएंगे, क्योंकि बट फिर भी ये है कि हर दिन के साथ हो सकता है इस कैंपेन की जो कड़ियां हैं थोड़ी कमजोर भी होती हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। कभी बीजेपी को उत्तर भारत का दल कहा जाता था, लेकिन चुनावी इतिहास में दर्ज है कि फिर उसने नॉर्थ ईस्ट में भी परचम फहराया और दक्षिण में भी उसकी धमक सुनाई दी। बावजूद इसके साउथ में भाजपा के हिस्से वैसी कामयाबी आई नहीं जैसी देश के दूसरे हिस्सों में आई है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे और दक्षिण से 2 राज्य इसमें शामिल होने वाले हैं, कर्नाटक और तेलंगाना। कर्नाटक में तो बीजेपी की सरकार है और तेलंगाना में 2014 के बाद से बीजेपी को अपनी कामयाबी की उम्मीदें लगातार जागी हैं। उधर आंध्र प्रदेश है जहां बीजेपी ने TDP से ताल बैठाई थी तो 2014 में 2 सीट हासिल की थी, लेकिन 19 में वो अकेले लड़े और फिर सिफर हाथ लगा। केरल है जहां बीजेपी ने 2019 में अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया और 13% वोट हासिल किए थे। तमिलनाडु भी है जहां से बीजेपी को कभी कोई ढंग की गुड न्यूज नहीं आई, अलबत्ता AIDMK से हाथ मिलाकर वो विधानसभा में 4 सीटें जरूर लाई है। तो एक बात साफ है कि जब जब भाजपा तमिलनाडु और आंध्र में गठबंधन करके लड़ती है तो ठीक ठाक परफॉर्म करती है। तो इसी पर हमने आज तक रेडियो रिपोर्टर आशीष रंजन से पूछा कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी के लिए जो है गठबंधन का फॉर्मूला मर्जी माने या मजबूरी माने।
दो चीजें राजनीति में बहुत अहम होती है, खासकर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, वो ये कि किसी भी राज्य में या किसी भी देश में जब वो पार्टी चुनाव लड़ती है तो 3 चीजें जो चीज है, एक विचारधारा, दूसरा कैडर और तीसरा लीडर, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। जब बीजेपी आज के समय में देश की सबसे डोमिनेंट पार्टी है और ज्यादातर राज्यों में अभी शासन कर रही है, लेकिन साउथ में उनकी स्थिति कर्नाटका को छोड़ के खराब है, उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश जिसका जिक्र आपने किया था, वहां पे उनका जो हो, ना तो कोई बड़े लीडर निकल मजबूत होके आए, ना उनके कैडर मजबूत हैं। तो इस परिस्थिति में पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प बचता है कि जो जो वहाँ की जनाधार वाली पार्टी है उसके साथ अलायंस करके अपना अपना वो एक परफॉर्मेंस को बेहतर करे या अपनी एक उपस्थिति दर्ज करवाए मजबूत। उस दौर में अगर उसको चुनावी परिणाम के दृष्टिकोण से तो देखिए, आंध्र प्रदेश में आपका चंद्रबाबू नायडू के जो पार्टी थी उनके साथ, फिर उसके बाद तमिलनाडु में जयललिता जी की जो पार्टी थी AIADMK, इनके साथ गठबंधन जब रहा बीजेपी का, तब तक उनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा। और जब उन्होंने अकेले जाने की कोशिश की तो ना तो वहां पे उनके कोई खास बड़े लीडर थे, ना उनकी कैडर थी और ना ही उनकी विचारधारा को मानने वाले ज्यादातर लोग थे। तो उसका परिणाम ये निकला कि आप देखेंगे कि उनका वोट शेयर तमिलनाडु में तो 1% से भी कम रहा जब वो अकेले लड़े हैं, आंध्र प्रदेश में भी कुछ ही। तो एक तरीके से जरूरी है और मजबूरी दोनों मान लीजिए कि उसके बगैर जी नहीं सकते, और मजबूरी ये है कि अगर ऐसे नहीं जाएंगे तो फिर धीरे धीरे उनका नाम भी मिटते जाएगा, कम होते जाएगा।
आशीष जी, तेलंगाना में तो साल के आखिर में चुनाव है लेकिन कुछ ही महीनों में कर्नाटक में जरूर चुनाव होना है, तो इन दोनों राज्यों में बीजेपी कोई नई लकीर खींचेगी लगता है आपको?
देखिए, शुरुआत कर्नाटका से करते हैं। कर्नाटका में मई में चुनाव होने वाले हैं। सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी वहाँ पे और साउथ की एकमात्र पार्टी है जहाँ पे वो दो दो बार सत्ता में आ चुकी है। इस बार का जो सत्ता है उनका तो अपना ही है, सबसे बड़ी पार्टी भी है वो वहाँ पे। तो एक यहाँ पे कर्नाटका में आप इन जनरल भी देखिए तो बहुत सारे लीडर वहाँ से आए, चाहे पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हों, अनंत कुमार जी हों, ऐसे कई सारे नेता भी, येदियुरप्पा जो पूर्व CM थे वहाँ पे, तो आप नाम लीडर बीजेपी के लीडर कर्नाटका में काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। प्लस कैडर भी है उनका, संगठन भी मजबूत है और पार्टी की विचारधारा के मानने वाले भी लोग हैं वहाँ पे जो बीजेपी जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करती है, तो वहाँ उनकी स्थिति मजबूत है। अब सवाल ये है, कर्नाटका का जो ट्रेंड दिखिएगा पिछले 20-30 दशक का जो है उसमें ये है कि सरकारें रिपीट नहीं होती है, ये ट्रेंड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसके बेसिस पे कि रिपीट नहीं होगी या हो ही जाएगी, ये तो हमें चुनाव में पता चलेगा कि उस समय क्या माहौल है। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि चाहे बीजेपी वहां जीतती है या हारती, लेकिन वो टॉप टू की पार्टी तो जरूर रहेगी, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा आंकड़े भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा फिक्र, क्योंकि आंकड़े उठा के देख लीजिए तो बीजेपी और कांग्रेस दो ही सेंट्रलाइज पार्टी जिनका स्प्रेड है, जो तीसरी बड़ी पार्टी है कर्नाटका में JDS, उनका दक्षिणी कर्नाटका या मैसूर रीजन कहिएगा वहां पे उनका लिमिटेड है, बाकी जगह ये दोनों पे। तो टॉप टू पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ही रहेगी। अब वो सरकार बचा पाएगी कि नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बीजेपी कितना बढ़िया एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ पाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में वो कर पाई। रही बात तेलंगाना की, इस साल के अंत में अक्टूबर में चुनाव होंगे, अक्टूबर नवंबर में, तेलंगाना में TRS मजबूत पार्टी है। बीजेपी वहाँ एक बहुत ही छोटी माइनर पार्टी हुआ करती थी और खासकर आंध्र और तेलंगाना जब साथ में थे तो चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी जो TDP थी उसके साथ गठबंधन में रहती थी, तो कुछ सीटें निकल जाती, कुछ वोट भी मिल जाते, लेकिन जब से वो नहीं है, अकेले लड़ा उन्होंने 2014 में और 18 में, तो काफी कम वोट मिले बीजेपी। लेकिन उसके बाद 2020 का हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुआ, वहां पे बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी। तो इन चीजों से तो कहीं ना कहीं लगता है कि कर्नाटका के बाद एक ऐसा राज्य जहां पे बीजेपी अपने जनाधार को उठाने में सफल तो हो रही है, वो एक लिमिटेड है। अब उसको वो कितना हद तक सफल हुई वो जब स्टेट वाइज चुनाव परिणाम आएंगे उसमें देखना पड़ेगा कि क्या बीजेपी जो मोमेंटम गेन की है वो उसको पूरा राज्य स्तर पर फैलाने में सफल रहती है या मेंटेन कर पाती है कि नहीं। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि हाल के दिनों में, खासकर पिछले 1.5 साल में, एक और चीजें 2020 के बाद एक्टिवेट हुई है, वो ये है कि जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन रेड्डी, उनकी बहन और वाईएस रेड्डी की बेटी शर्मिला रेड्डी, उन्होंने भी अपनी एक पार्टी बनाई है YS तेलंगाना पार्टी करके, तो वो भी काफी मूवमेंट कर रही है। अब जो है सो NTPRS जो वोट है उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है या कंसोलिडेशन होता है एक पार्टी के फेवर में, ये देखना बहुत अहम होगा और उसी चीज पे बीजेपी का जो भविष्य है तेलंगाना में डिपेंड करता है।
बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। हम लोग अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए हैं, लेकिन याद दिला दूं कि रूस यूक्रेन की जंग अब भी जारी है। पिछले हफ्ते शनिवार को रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर में 9 मंजिला अपार्टमेंट पर अटैक किया था। 3 बच्चों समेत 40 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। 25 लोग अब भी लापता है। बखमुत, अवदिका, खारकीव और सुमी में गोलीबारी चल रही है और इन सभी घटनाओं ने यूक्रेनी सैनिकों के ऊपर ईस्टर्न फ्रंट को बचाने का दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब उनकी नजर पश्चिमी देशों से आने वाले हथियारों की सप्लाई पर टिकी है। जोर टैंकों पर थोड़ा ज्यादा है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस पर अपनी बात भी रखी। वहीं पोलैंड फिनलैंड जो हैं वो यूक्रेन को जो जर्मनी में बने हैं लियोपोल्ड 2S टैंक वो देने को राजी हैं, लेकिन मामला अटका है जर्मनी को ही लेकर, क्योंकि बिना उसकी रजामंदी के पोलैंड और फिनलैंड यूक्रेन को उसका ही बनाया हुआ लियोपोल्ड 2S टैंक नहीं भेज सकते। जर्मनी का कहना है कि उसने पहले ही यूक्रेन की बहुत हेल्प की है। मार्च में भी उसके 40 आर्म्ड व्हीकल्स और एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन पहुंचेंगे। लेकिन जहां तक बात टैंक सप्लाई करने की है तो यहां वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि अमेरिका ने भी यूक्रेन को 14 टैंक्स देने का वादा किया है। तो अगर अमेरिका इस प्रोसेस को इनिशिएट करता है तभी जर्मनी भी टैंक भेजने के लिए हामी भरेगा। तो अब सबसे पहला सवाल तो यह है कि यूक्रेन का फोकस टैंकों पर क्यों है, वो क्यों रूस के खिलाफ टैंकों के सहारे ही लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है। ये हमने पूछा द लल्लन टॉप में डिफेंस जर्नलिस्ट निखिल वाट से।
देखिए, एक चीज जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप ले लीजिए कि यूक्रेन में बहुत बड़े बड़े मैदान हैं। टैंक्स का काम क्या है? टैंक्स होते हैं मोबाइल पिल बॉक्स, चलता फिरता बंकर है, उसके कुछ अंदर आपके ट्रूप्स हैं। टैंक क्या करता है? वो इन्फेंट्री को सपोर्ट कर सकता है। टैंक के पीछे पैदल फौज घुस सकती है ऐसी जगह जहां बहुत स्टिफ चैलेंज आ रहा है, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ी तोप लगी हुई है, वो गोलियां फायर कर सकता है, आपको आड़ देता है जिसके पीछे चल के आप आगे जा सकते हैं। तो जो मनूवर वारफेयर जिसको हम कहते हैं कि बड़े इलाकों को एक स्वीप में अपने कब्जे में करना, जो मतलब एक ब्लिट्ज़क्रीग की तरह लड़ाई लड़ना चाहता था रूस, अलग अलग फ्लैंक से शुरू करके किसी एक पूरे एरिया को सर्कल कर लेना और उसके बाद फिर उसको बड़े बड़े सिस्टम से अपने आधिपत्य में करना, उनको ये लगता होगा, जेलेंस्की को मुझे मेरा ये मानना है कि ऐसा रूस फिर से कर सकता है, क्योंकि हमने ये देखा कि ये लड़ाई बहुत लंबे समय से अब ये वार ऑफ अट्रिशन की तरह बनती जा रही है कि दोनों पक्ष बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं हो पा रहे हैं मोर्चों पे। पहले रूस गेन कर रहा था, फिर रूस के गेन्स स्टेबलाइज हो जाते हैं, फिर उसके बाद यूक्रेन ने कुछ एरिया गेन किया, अब वहां वो स्टेबलाइज हो गया। अब हम देख रहे हैं कि एक कुछ दिन अब वाग्नर ग्रुप ने एक छोटा सक्सेस उनको मिला बाखमूत के पास में, लेकिन उससे ज्यादा बहुत ज्यादा लाइंस अब चेंज नहीं हो रही है। तो अगर एक दोबारा कोई ऑफेंसिव शुरू होता है जिसमें रूस टैंक्स इस्तेमाल करता है, ऑब्वियसली जेलेंस्की चाहेंगे कि उनके पास भी टैंक्स हो।
अच्छा निखिल, अभी जो पूरा माहौल बना है उसमें अमेरिका और जर्मनी दो मेन प्लेयर्स हैं टैंक सप्लाई में, लेकिन दोनों ही टैंक देने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम तो वो यूक्रेन को सप्लाई कर ही रहे हैं?
एक वेट ऑफ हिस्ट्री है कि जर्मनी का ये मतलब इतिहास रहा है कि जब उन्होंने रूस के खिलाफ टैंक्स इस्तेमाल किए वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ वो हम जानते हैं। तो एक वो एक हैंगओवर है कि हमको दोबारा वो गलती नहीं करनी है। दूसरा ये है कि जर्मनी मतलब वो पहला व्यक्ति नहीं बनना चाहता जो अकेले कोई लड़ाई मोल ले ले जो उसकी नहीं है, ठीक है। इसलिए ओलाफ शुल्स ने ये नहीं कहा कि मैं कुछ हेल्प नहीं करना चाहता। ओलाफ शुल्स ने कहा कि बाइडन भी आ जाए, मैं भी आ जाऊं, चार पांच लोग मिलकर के टैंक्स भेजेंगे तो फिर हम भी कर देंगे। और शुल्स के साथ में ये प्रॉब्लम है कि जर्मनी में भी तो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसका मतलब वहां भी ऑपोजिशन है, वहां की लोकल पॉलिटिक्स है। शुल्स को ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लोबल लेवल पे जवाब देना, उनको अपने मुल्क में भी जवाब देना होता है अपनी नीतियों के लिए। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि जर्मनी अपने हाथ नहीं जलाना चाहता है और इसीलिए एक स्केप्टिसिज्म है उसके अंदर। वो अगर सब लोग करेंगे कोई चीज तो वो जर्मनी भी करेगा। आपको याद होगा इससे पहले बात चली थी कि जो आपके ईस्ट यूरोपियन नेशंस हैं वहां पे वो यूक्रेन को अपने जेट्स दे दें, यूएस अपने नए जेट्स उनको दे देगा, या यही चीज आपके जो आपके वेस्टर्न यूरोप में देश हैं जिन्होंने अपने फाइटर जेट्स बनाए, चाहे फ्रांस हो, चाहे वो आपके स्वीडन हो, ब्रिटेन हो, इनके तरफ से वो ऑफर था, लेकिन वो फाइनली क्या हुआ, वो नहीं दिए गए जेट्स, क्योंकि वो चीज स्टेबिलाईज हुई नहीं, मटेरियलाइज हुई नहीं, कोई उस पर अंतिम सहमति बनी नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जर्मनी अगर ये कह रहा है, अगर ये बात सही है कि ओलाफ शुल्स ना दे रहे हैं टैंक्स, ना जो बाकी देश हैं जो अपने लेपर्ड्स देना चाहते हैं यूक्रेन को, उन्होंने उसको बैकस्टॉप इसलिए किया है कि वो अकेले जिम्मेदार, भाई कल को लड़ाई अगर खत्म होती है और पुतिन जीत ही जाते हैं तो वो जर्मनी के पीछे आएंगे फिर, अगर लेपर्ड्स से ही मतलब ये लड़ाई, मैं थे इसकी बात कर रहा हूँ, एक मतलब उसको इन थ्योरी अगर ये हो जाता है तो वो एक रूस जर्मनी को अपने दुश्मन की तरह देखेगा ना, ओलाफ शुल्स ये चाहते नहीं है।
निखिल, टैंक पहुंचने में देरी हुई या टैंक नहीं पहुंचा तो ये कितना डैमेज कर सकता है यूक्रेन को, ये थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूंगा।
अभी तक जितने टैंक्स यूक्रेन के पास में रहे हैं उन्होंने उनको मुझे लगता है स्मार्टली इस्तेमाल किया है। हमने देखा कि टैंक्स की यूटिलिटी क्या है, वो एक फ्लैट एरिया हो प्लेन्स में, डेजर्ट्स में टैंक्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर अर्बन वारफेयर की जैसे ही बात आती है वहां पे टैंक की यूटिलिटी हो जाती है लिमिटेड। रूस को भी यही तो हुआ, रूस ने जब अपने टैंक्स और अपने भारी वेपनरी लेकर के वो यूक्रेन के शहरों के अंदर गया तो वहां आपका जो एडवांटेज ऑफ मनूवर होता है वो खत्म हो जाता है, वहां क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट आता है। तो ये देखने वाली चीज होगी कि अगर उनको टैंक्स नहीं मिलते हैं तो क्या वो दूसरा एक वेव झेल लेंगे, एक रशियन असॉल्ट जो सिर्फ सिर्फ टैंक्स पे डिपेंडेंट होगा। मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वो आउटकम को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि आप अगर इस लड़ाई को देखेंगे तो रूस का पड़ला तो हमेशा ऐसा ही भारी रहा, वो हमेशा बड़े हथियार और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स लेके लड़ाई में उतरा। यूक्रेन ने किस तरह से उसको, यूक्रेन ने हैरेस किया उस, ठीक है कि आप टैंक लेकर आए तो हमारे पास टैंक किलर मिसाइल्स हैं, जैवलिन्स चला रहे हैं या वो बाकी मिसाइल्स चला रहे हैं, तो वो टैंक किलर हैं, आप फाइटर जेट लेके आ रहे हैं तो ये स्टिंगर चला रहे हैं। अगर ये हैरेसमेंट वाली तक मतलब नीति पे ही वो आगे बढ़ते हैं तो मतलब रूस के लिए जो पुराने अनुभव रहे हैं वो मतलब उनका एक रिपीट भी देखने को मिल सकता है। ये एक ऐसी चीज है जो जब लड़ाई अगर होती है, हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो, लेकिन अगर लड़ाई होती है तो ये तभी देखने को पता चलेगा कि रूस ने क्या अपनी मतलब पिछले अनुभवों से कुछ सीखा है। अगर वो एक बेहतर तैयारी के साथ उतरेगा तो बिल्कुल ज़ेलेंस्की को लगेगा कि कुछ टैंक्स होने चाहिए थे उनके पास।
बहुत बहुत शुक्रिया निखिल आपका। उधर खेल की दुनिया में भी हलचल है। टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, इंडिया के रोहन बोपन्ना मेंस टेबल्स के पहले राउंड में ही हारकर बाहर हो गए हैं। हॉकी वर्ल्ड कप में इंडिया ने वेल्स को 4-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल की उम्मीदें जिंदा रखी हैं। इसके बाद कल रियाद में फुटबॉल के बड़े सितारों का जमघट लगा और मेसी से लेकर रोनाल्डो, नेमार, एम्बापे जैसे खिलाड़ियों ने फ्रेंडली मैच खेला। लेकिन अब फोकस शिफ्ट हो गया है इंडिया और न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज पर। कल रायपुर में दोनों टीमों के बीच दूसरा मैच खेला जाना है। पहला मैच बहुत रोमांचक रहा था जिसे टीम इंडिया ने 12 रनों से जीता था। शुभमन गिल के शानदार दोहरे शतक से गदगद क्रिकेट फैंस एक और थ्रिलर कॉन्टेस्ट की उम्मीद कर रहे हैं। इंडिया चाहेगी कि ये मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ले, लेकिन क्या ये इतना आसान रहने वाला है? तो कल के इस मैच पर हमारे साथी कुमार केशव ने बात की द लल्लन टॉप के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विपिन किराड़ से।
विपिन जी, पिछले मैच में हमने देखा रन फेस था एक तरीके से, इस उत्सव में क्या कमियां छुप गई भारत की?
देखिए, पहला ओडीआई पूरी तरीके से शुभमन गिल की पारी की वजह से हम लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि जो दोहरा शतक आया निकल के। लेकिन अगर उस दोहरे शतक के अलावा आप स्कोर कार्ड पे अगर आप बारीकी से नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो दूसरे बल्लेबाज थे, जो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे हमारी टीम के, 34 रन कप्तान रोहित शर्मा, वो बना कर गए। यानी आप डिफरेंस ऑफ देख सकते हैं कि 349 रन आपकी टीम ने बनाए, उसमें से एक बल्लेबाज का दोहरा शतक और दूसरे बल्लेबाज जो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है वो 34 रन। तो जितने भी बल्लेबाज रहे सब आउट ऑफ फॉर्म, मतलब उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। जैसे विराट कोहली अच्छे टच में लगातार 2 शतक बनाए, फिर तीसरे मुकाबले में फिर वो पारी नहीं दिखी। शुरुआत हमेशा मिल रही है रोहित शर्मा को दूसरे खिलाड़ियों के साथ, उस शुरुआत को बड़ी पारी, क्योंकि रोहित शर्मा का भी मैं मानता हूँ वही फेज़ है विराट कोहली वाला, जैसा हम विराट कोहली के बल्ले से 55-60-70 रन की बहुत सारी पारियां देख रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा हमेशा 264 रन, 200 से बड़ी पारियों के लिए पहचाने जाते रहे कि मतलब अगर वो प्लेयर खेल रहा है तो वो अकेले दम पे मैच फिनिश कर सकता है। लेकिन पिछले 3 साल अगर आप उठा के देखेंगे तो रोहित शर्मा उस फॉर्म में, उस टच में तो नज़र नहीं आ रहे। उसके अलावा भी बल्लेबाजी में अगर आप और बल्लेबाजों की बात करें तो जो ईशान किशन है उनको मौका मिला दूसरे मैच के अंदर, पहले मैच के अंदर, माफ़ी चाहूँगा, और ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ईशान किशन को लेकर जो चीज़ें कही जा रही हैं कि आप उनको 200 रन बनाने के बाद टीम से बाहर कर दिया, रोहित शर्मा ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली कि नहीं, ईशान किशन की जगह इस प्लेइंग 11 में है और न्यूजीलैंड के खिलाफ आप देखेंगे भी ओपन भले ही ना कर पाए लेकिन मिडिल ऑर्डर में उनको जगह देंगे। तो मिडिल ऑर्डर में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए और मैनेजमेंट ये चीज़ जानता भी है कि जो विश्व कप इस साल हमें खेलना है वो घर में खेलना है और उसके लिए हमें टीम तैयार करनी है। कहीं भी इस टीम को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये टीम आपके लिए जो अगले साल 2024 में आपको जो यूएसए और वेस्टइंडीज में T20 वर्ल्ड कप खेलना है उसके लिए एक टीम तैयार की जा रही है। ईशान किशन हो, शुभमन गिल हो, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन अभी इंडियन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए तो कहीं ना कहीं बैटिंग में है ना मुझे थोड़ी बहुत समस्याएँ नज़र आ रही हैं। और जब सूर्या नहीं है टीम के अंदर, उनको लगातार मौके वनडे टीम में नहीं मिल रहे, श्रेयस अय्यर को इस सीरीज़ में मौका नहीं दिया गया है, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी को और बेहतर करना होगा। क्योंकि गेंदबाजी पर हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं केशव, गेंदबाजी पिछले मैच में भी हमने गेंदबाजी को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया लेकिन बैटिंग में भी विराट कोहली शतक बनाते हैं, उसके बाद बाकी बल्लेबाज लगातार परफॉर्म नहीं कर रहे, और अगर दोहरा शतक शुभमन से आता है तो बाकी बल्लेबाज उस तरीके से उस टच में परफॉर्म नहीं कर पा रहे।
सूर्य कुमार यादव T20 में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, सुपर सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन ODI का जो भी एक पजल है ना उसको थोड़ा सा उनको क्रैक करना।
बिल्कुल, मतलब देखिए सूर्य कुमार यादव टैलेंट में किसी को कोई शक नहीं है, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, इंटेंट ज़बरदस्त है, T20 क्रिकेट में उन्होंने वो सब कर दिया जो बहुत सारे और यंगस्टर्स नहीं कर पाए उस लेवल का। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना होगा कि उनकी टीम में जगह किस तरीके से बनाई जाएगी, क्योंकि सूर्या की जो लड़ाई है मेरी नज़र में वो लड़ाई है वनडे टीम के अंदर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर से, और किसी बल्लेबाज से उनकी कोई फाइट नहीं है, क्योंकि उनको या तो नंबर 3 पे खेलना है या नंबर 4 पे खेलना है। लेकिन अगर आपके पास जो नंबर 3 और नंबर 4 जो दो बल्लेबाज हैं उनके परफॉर्मेंस आप उठा के देखेंगे तो फिर सूर्या के लिए समस्याएं हो जाती हैं कि आप विराट कोहली को कैसे बाहर करोगे जो अब कंसिस्टेंटली वनडे फॉर्मेट में रन्स बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं बचा भी तो सिर्फ वनडे और टेस्ट ही है ना, T20 से तो आपने ऑलरेडी बाहर कर दिया है। तो सूर्या के साथ समस्या ये नहीं है कि सूर्या को बाहर बैठा देख के टीम मैनेजमेंट के लिए ये मुझे लगता है कि पॉजिटिव टेंशन है कि अगर सूर्या प्लेइंग 11 में नहीं आ रहे। लेकिन क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वहां पे विराट और श्रेयस लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। विराट को तो बाहर करना मुझे लगता है बहुत ज्यादा बड़ा कॉल होगा, वनडे वर्ल्ड कप से पहले ऐसा कुछ होने नहीं वाला अगर वो लगातार शतक ना भी बनाए तो भी। लेकिन श्रेयस अगर बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं करते तो फिर सूर्या की टीम में जगह बन सकती है।
प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है, क्या कोई बदलाव देख सकते हैं स्पेशली बॉलिंग में? अगर
मुझे नहीं लगता, आपने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज देखी, आपने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज देखी, टीम की सोच वही है कि पहले दो मैचेस में आप अपने सेम 11 के साथ जाइए, और कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं। जो एक चीज़ नज़र आई थी पिछले मैच में कि 28 ओवर में आप 5 विकेट सामने वाली टीम के निकाल देते हैं, उसके बाद टेलेंडर्स को आउट नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं सोच बदलने की ज़रूरत है। प्लेयर्स आपके अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो मोहम्मद सिराज को आप उठा के देख लीजिए पिछले एक साल में, उमरान मलिक एक ऐसा नाम मुझे लगता है जो हो सकते हैं कि अगर शार्दुल की जगह उनको टीम में ले आया जाए, क्योंकि आप एक इस सोच के साथ जा रहे हैं कि यार अगर किवी गेंदबाजों के सामने हमारे जो बल्लेबाज हैं वो नहीं चलते, हम 4 या 5 विकेट जल्दी खो दें, तो आपको बैटिंग में डेप्थ मिल जाए। हार्दिक के बाद एक शार्दुल जैसा भी एक प्लेयर हो जो आपके लिए थोड़ी सी गेंदबाजी थोड़ी सी बल्लेबाजी कर जाए, लेकिन वनडे क्रिकेट मुझे नहीं लगता कि T20 स्टाइल से चलता है। उसके पास नीचे के जो 5 गेंदबाज हैं वो प्रॉपर गेंदबाज होने चाहिए, और उसमें उमरान बिल्कुल फिट बैठता है, और उनको तो कंसिस्टेंट खिलाना भी चाहिए क्योंकि इस साल हमें वनडे वर्ल्ड कप खेलना भी है।
बहुत शुक्रिया केशव, बहुत शुक्रिया विपिन। और अब कुछ अलग कुछ रोचक खबरों वाला सेगमेंट भौचक, आज सुनिए जमशेद कमर सिद्दीकी से।
गुलजार कहते हैं कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, पर इस दौर की जिंदगी ना बड़ी है और ना लंबी। आदमी 60 पार कर जाए तो गनीमत समझिए, क्योंकि 61 का होने के बाद दुनिया उसे उस ट्रेन की तरह लगने लगती है जो कभी भी प्लेटफॉर्म छोड़ देगी। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि आज दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र है 115 साल, उन्होंने अपनी लंबी उम्र का राज बताया है। नाम है मारिया ब्रानियास मोरेरा। पैदाइश है मार्च 1907 की, अमेरिका में पैदा हुई और मौजूदा वक्त में स्पेन में रहती हैं। गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल हो गया है लंबी उम्र के लिए। आज की तारीख की बात करें तो इनकी उम्र 115 साल 322 दिन की है। फ्रांस की 118 साल की लूसिल रैंडन की मौत के बाद वो दुनिया की सबसे उम्रदराज जिंदा शख्स बन गई हैं। तो अपनी लंबी उम्र का राज मारिया ने कुछ यूं बताया। उन्होंने कहा, अनुशासन, शांति, परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा रिश्ता, कुदरत से नजदीकी, इमोशनल स्टेबिलिटी और चिंता पछतावा नहीं, ढेर सारी सकारात्मकता और नेगेटिव लोगों से दूरी, ये है उनकी लंबी उम्र का राज। उन्होंने आगे कहा कि ये भी लगता है कि लंबी उम्र किस्मत से भी मिलती है, ये किस्मत और अच्छे अनुवांशिकी का होना भी हो सकता है। खास बात यह है कि मारिया आज भी देखने में स्वस्थ लगती हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर उनकी तस्वीर साझा की गई जिसमें वो चेहरे पर एक सौम्य मुस्कुराहट के साथ दिखाई देती हैं। पर इसी खबर के साथ मैं सोच रहा था कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले अगर बनारस के घाट पर आ जाएं तो चक्कर खाकर गिर पड़े, क्योंकि यहाँ के अलग अलग घाटों पर बैठने वाले बाबा अपनी उम्र कभी 130 बताते हैं, कभी 140। ये और बात है कि उनके पास ना कोई बर्थ सर्टिफिकेट है ना कोई सबूत है, लेकिन कहते यही हैं। खैर, उनकी बात वो जाने, मगर हम मारिया दादी की और लंबी उम्र की कामना करते हैं।
थैंक यू जमशेद। तो इस हफ्ते के आखिरी दिन भर में इतना ही। आपसे अगली मुलाकात सोमवार को होगी, लेकिन आज तक रेडियो आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। कल तीन ताल लाएगा, परसों स्टोरी बॉक्स लाएगा, इसके अलावा ज्ञान ध्यान और 5 मिनट के बुलेटिन तो होंगे ही। इन सबको सुनते हुए वीकेंड बिताइएगा। ठंड धीरे धीरे कम होने लगी है, लेकिन लापरवाही नहीं करनी है। अपना ख्याल रखिए। आज के दिन भर को प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने, साउंड मिक्सिंग की है अमृत रज जी ने। बाय बाय टाटा। और कुछ कहना सुनना हो तो प्लीज बताइएगा radio@aajtak.com पर। हैप्पी वीकेंड और सुनते रहिए आज तक रेडियो।